ये बताया गया है कि भक्ति विनोद ठाकुर के सभी जो जितने भी बच्चे उनमें से सभी भक्त नहीं थे भगवान के, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर को जानता है कि वो आध्यात्मिक संसार में कौन है, कमल मंजरी। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है, और एक मंजरी गोलोक वृंदावन की इस भौतिक संसार में सोचिए किस प्रकार के भजन की रचना कर रही है, जिसके अंदर इस भौतिक संसार का जो विवरण है वो इस तरीके से पेश किया गया है कि मानो जैसे डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट दिखाता है, सब कुछ साफ साफ दिखता है कि कौन सा भाग स्वस्थ है कौन सा भाग अस्वस्थ है। और इसलिए जब भक्ति विनोद ठाकुर जो गृहस्थ आश्रम में बोल रहे हैं, ओरे मन भालो नहीं लागे ए संसार, तो ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने गृहस्थ आश्रम में बहुत त्रस्त थे इसलिए इस प्रकार का गीत भजन रचे हैं। नहीं, एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब मैं अपने घर आता हूं तो मेरा घर मुझे गोलोक वृंदावन के जैसा लगता है। वही भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में बोल रहे हैं कि कैसे धन जन परिवार केह नहीं कभुकार, काले मित्र अकाले अपर, के सारे जितना भी धन जन परिवार जो कुछ है ये सब अंतकाल में पराय हो जाते हैं। और हमें यह नहीं समझना चाहिए कि भक्त के जीवन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक रूप से हम सबको एक दूसरे से अलग होना ही है। आंतरिक रूप से तो हम एक साथ रहेंगे, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये शारीरिक रूप से दूर होना यह हमारे हाथ में नहीं है, तो चाहे हम कितना भी निकट या कितना भी प्रेम किसी से करें, इस सत्य को नकार नहीं सकते कि हमें शारीरिक रूप में एक दिन सबको अलग हो जाना है। और इस भौतिक संसार में इस बात को लेकर सभी भयभीत रहते हैं, इसलिए देखिए कि इस भौतिक शरीर का जो के जो दो पड़ाव हैं, एक जन्म लेना और एक मृत्यु, इन दोनों पड़ावों में हर्ष और विलाप ये दोनों एकदम एक्सट्रीम में देखने को मिलता है कि जब कोई जन्म लेता है तो इतना हर्षोल्लासित लोग हो जाते हैं, और वही शरीर जब कोई व्यक्ति त्यागता है तो इतना विलाप उसी शरीर के प्रति होता है। अब यदि हम श्रीमद् भागवत में जो महाजन इनकी जो चर्चा की गई है, इनमें से यदि हम परीक्षित महाराज को लें तो परीक्षित महाराज का जन्म और परीक्षित महाराज ने जब अपना शरीर छोड़ा, ये दोनों यदि हम देखें तो दोनों में बहुत ही घोर विपत्ति उनके ऊपर आई। उनका जन्म भी कोई साधारण बालक के समान नहीं था। सोचिए कि एक शिशु गर्भ में पहले से ही उस अवस्था में और उसके ऊपर अश्वत्थामा जैसा कोई व्यक्ति ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। तो परीक्षित महाराज अपनी माता के गर्भ में एक ये भी टीका की गई है कि परीक्षित महाराज उनकी मृत्यु हो गई थी उस ब्रह्मास्त्र की वजह से, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उन्हें पुनर्जीवित किया। और एक टीका इस प्रकार से भी है कि परीक्षित महाराज उस ब्रह्मास्त्र से प्रभावित होने से पहले भगवान ने बचा लिया। तो परीक्षित महाराज का यदि हम जन्म देखें तो हालांकि हम परीक्षित महाराज का गुणगान करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उनके माता के गर्भ में हुआ उन्हें, परंतु परीक्षित महाराज को ये पता नहीं था कि भगवान आएंगे और उससे पहले उनकी माता जाकर भगवान को बुलाएगी और भगवान आकर उनकी रक्षा करेंगे। उस समय यदि हम परीक्षित महाराज की स्थिति में होते, सोचिए, कोई ऐसा वैसा अस्त्र नहीं, आजकल जो लोग अबॉर्शन करते हैं बच्चों का, उसमें भी कोई ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करता बच्चे को मारने के लिए। तो सोचिए, आजकल के अबॉर्शन से ज्यादा नृशंस हत्या परीक्षित महाराज की होने जाने वाली थी। ये उनका जन्म, और उस समय भगवान ने आकर, और भगवान ने उनकी सहायता की, क्योंकि परीक्षित महाराज संबंधित थे अर्जुन से, ये बताया गया। स्वयं परीक्षित महाराज भी बोलते हैं भागवत में कि क्योंकि मैं पांडवों से संबंधित हूं इसलिए आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम भी इस बात पर गौर करें कि हमारा क्या सौभाग्य है कि हम भक्ति विनोद ठाकुर, कमल मंजरी, इनके रचे हुए भजन, श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए इस हरे कृष्ण आंदोलन में जो इतना शुद्ध कृष्ण भावना का पथ है, इसका पालन हम कर पा रहे हैं। वो जो कथा हम बता रहे थे, स्थान प्रधाना न बल प्रधाना, और इसलिए चाहे हम कोई भी आश्रम में हों, गृहस्थ या ब्रह्मचारी आश्रम में, हमें इस अपने सौभाग्य की स्थिति को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम इसे भूल जाएंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, तो इसे भूलने की वजह से फिर कृतज्ञता वो हमारे जीवन से जाती रहेगी। और चाहे हम कितना भी जप करें, चाहे हम कितने भी तीर्थ स्थानों में जाएं, चाहे हम कितने भी लोगों को प्रचार करें, प्रोजेक्ट्स खड़ा करें, यदि हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता नहीं है जो हमें दिया गया है उसके प्रति, तो ये सब कुछ कोई मायना नहीं रखता। भगवान की नजरों में ये सब कुछ कोई मायना नहीं रखता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर वो कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का एक नाम काफी है हमें गोलोक वृंदावन ले जाने के लिए, एक नाम। परंतु वो एक नाम इतना शुद्ध होना चाहिए, इतना शुद्ध होना चाहिए कि वो नाम लेने के बाद वैकुंठ धाम से विमान आकर हमें ले जाए, इतना शुद्ध वो एक नाम होना चाहिए। सोचिए कि वो एक शुद्ध नाम लेने के लिए एक जीव को कितने जन्मों तक भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए ये हमें समझ लेना चाहिए कि इतना आसान नहीं है भगवत धाम जाना, और विशेष रूप से जो हमें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में गोलोक वृंदावन धाम के विषय में जो बताया गया है, ये गोलोक वृंदावन धाम ये साधारण किसी पुराण में भी इसका उल्लेख नहीं किया जाता, इतना बहुत रेयरली गोलोक वृंदावन धाम के बारे में बताया जाता है। इसलिए अनार्पित किसी ने अर्पित नहीं किया वो चैतन्य महाप्रभु हमें देकर गए। तो जब इस बातों पर हम गौर करेंगे हर क्षण हर दिन, तब पता लगेगा कि हमारी योग्यता क्या है और हमें क्या दिया गया है। अब देखिए, हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमने ये जगहों पर जाकर इन जगहों को देखा और इन जगहों पर लोगों को भी देखा। तो हालांकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग सब इंद्रिय भोग में लगे हैं और अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं, परंतु इनको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि यदि हम इस आंदोलन के संपर्क में नहीं आए होते, या ये कहने से अच्छा ये कहना ठीक रहेगा कि यदि श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन में नहीं आए होते, क्योंकि हमने तो कोई चेष्टा की नहीं, श्रील प्रभुपाद ही अपने अनुयायियों के द्वारा हमारे जीवन में उन्होंने प्रवेश किया, तो आज हम भी वो बुशी डैम की वो सीढ़ियों पर उसी प्रकार के काम कर रहे होते जो सब लोग कर रहे थे। इसलिए हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि मुझे क्या-क्या मिला हुआ है जो कि एक साधारण मनुष्य को भी भार नहीं मिल सकता, जो मुझे इस हरे कृष्ण आंदोलन में मिला है। जैसे लोग आजकल इतना प्रयास कर रहे हैं यशस्वी बनने का, ऐश्वर्यशाली बनने का, बहुत विख्यात ख्याति प्राप्त करने का, परंतु असली ऐश्वर्य क्या है ये समझ लेना चाहिए। जैसे वृंदावन में बताया गया है कि असली वृंदावन का ऐश्वर्य है, गिरिराज महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे, वृंदावन का असली ऐश्वर्य है नेचुरल प्रोडक्ट्स और वैष्णव रिलेशंस। ये असली ऐश्वर्य है और इसी की चर्चा हम कर रहे थे कि ये जो प्राकृतिक चीजें हैं ये किसी व्यक्ति को असली रूप में ऐश्वर्यशाली बनाती है। जैसे अब यहां पर ये सारे प्रॉपर्टी का रेट्स इतना क्यों है? क्योंकि यहां पर प्राकृतिक जगह में इस प्रकार का घर बनाना ये ऐश्वर्य है। नहीं तो ऐसे बंगले तो बहुत जगहों पर है, परंतु ये बंगला कहां पर स्थित है उसका ऐश्वर्य है। कहां पर स्थित है? ऐसी प्राकृतिक जगह पर। तो इसलिए गिरिराज महाराज बता रहे थे कि वृंदावन का ऐश्वर्य है नेचुरल प्रोडक्ट्स, लाइफ स्टॉक, जैसे गाय दूध दही मक्खन ये सारी चीजें, और इससे ज्यादा वैष्णव रिलेशन, उनके आपस का जो मैत्री प्रेम का संबंध है। क्योंकि इस कलयुग में ये प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे मनुष्य कितना भी प्रगति कर ले इस कलयुग में, उसे ये जो दो चीजें हैं वो प्राप्त होना बहुत मुश्किल और आगे तो असंभव हो जाएगा। अभी भी हम देखते हैं। तो यदि हम इस बात पर गौर करें कि हमें ये मिला हुआ है इस हरे कृष्ण आंदोलन में, ये ऐश्वर्य जो कि बाहर लोग इस ऐश्वर्य को जानते तक नहीं है, उसे प्राप्त करना तो दूर की बात है। अब इसमें हमें समस्या होती है हमारे वैष्णव रिलेशन में, और वो समस्या क्यों होती है? कलयुग के वजह से, कलह प्रधान जो युग है ये, और कला प्रधान युग होने के वजह से इसमें है कला और कपट, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। और क्योंकि हम इतने जन्मों से हमारे कर्मों का बोझा लेकर जी रहे हैं इस भौतिक संसार में, और इसलिए इसी के साथ, कलह के साथ और कपट के साथ, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। इसलिए यदि इन दोनों पर हम गौर करें तो कई बार हमें लगता है कि वैष्णव का संग बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा थोड़ा अकेले में रहते हैं तो भगवान पर ज्यादा ध्यान जाएगा। कई बार लगता है कि मैं जिस भक्ति के स्तर पर हूं उस भक्ति के स्तर पर बाकी सारे वैष्णव इतना नहीं। हमें लगता है कि हमारी भक्ति बहुत अनोखी, यूनिक है दूसरों की तुलना, तो इसलिए कई बार हम अकेलापन वो महसूस करना चाहते हैं, और कई बार जब उससे उकता जाते हैं तो फिर चलो बहुत हो गया वहां पे, अभी घुटन हो रही है कि चलो भक्तों के साथ। तो कली, मूर्तिमान कली जो है, चाहे हम अकेले रहें चाहे हम भक्तों के संग में रहें, ये दो चीजें जो कलयुग में प्रधान है वो हमारे लिए हर समय कली मूर्तिमान प्रस्तुत किए हैं। अकेले जब रहते हैं तो कपट, तो इसका डर है कि हम कपट या कपटी बन सकते हैं अकेले, और जब संग में रहते हैं तो कला कोरल, तो कहां जाए, या तो संग में रहना होगा या संग में नहीं। तो इसलिए बात हमें समझ लेना चाहिए कि जो वैष्णव रिलेशन है ये कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है बाहर। यहां तक कि आप जाओ और ऐसे परिवार में कि जो कहे कि हमारा जो परिवार है पूरा खानदान, जॉइंट फैमिली, इतने सदियों से, पीढ़ियों से रह रहा है एक साथ, परंतु वहां पर भी ये दोनों चीजें प्रचुर मात्रा में, जैसे हम लोग बहुत गर्व करते थे हमारे परिवार के ऊपर बचपन में, मैं, मेरे भाई बहन और माता पिता, हमें लगता था कि ऐसा परिवार, ऐसा आइडियल फैमिली किधर नहीं, बहुत गर्व होता था हमें हमारे परिवार के। और ऐसा हर समय चर्चाओं में, वार्तालाप में कि हम कभी अलग नहीं हो। अब जब मैं अपने स्वयं के परिवार जिसमें मैं पैदा हुआ उसमें देखता हूं, हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक परिवार का सदस्य अलग, मैं अलग, मैं भाई अलग, दोनों भाई अलग, बहन अलग, यहां तक कि माँ अलग, पिताजी तो पता नहीं अब कहां पर है। तो यही बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर इतना गर्व जब व्यक्ति करता है, और आगे चलकर फिर मूर्तिमान कली दिखा देता है कि जब तक कृष्ण भक्ति नहीं है तब तक कली के ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव। और इसलिए देखिए कि जब हम वैष्णव के साथ आते हैं तो वैष्णव के साथ जो रिश्ता स्थापित होता है वैसा रिश्ता और कहीं स्थापित नहीं हो सकता। अब यहां पर हम एकत्रित हुए हैं, यदि हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो असंभव था कि हम यहां पर, यदि मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि हम कभी भक्ति में आए नहीं, तो गोपालन प्रभु महिंद्रा में काम कर रहे हैं, मैं एयरफोर्स में, और रोहित घाट पे और आदिनाथ प्रभु पता नहीं किसके लिए तबला बजा रहे हो मारुति क्या वैन वैन चला खेती करा है ना खेती करा। तो यदि हम स्वयं भगवान स्विट्जरलैंड कहाँ स्विट्जरलैंड स्वयं भगवान को तो यदि हम इस बात पर कल्पना करें कि यदि हम भक्ति में नहीं आए होते तो आज यहां पर एकत्रित होकर ये सब करना ये असंभव। शर्मा प्रभु बोलिए शर्मा प्रभु भक्ति में नहीं आए होते तो आज यहां पर शायद और कोई कारण से कोई दूसरी पार्टी भी हो सकती है। या कल्पना कीजिए कि हम लोग एक साथ मिलते एक साथ मित्र बनते बिना कृष्ण भक्ति के तो आज हम यहां पर आते और हम क्या करते ये सब राजमच्छी पॉइंट और बोशी बहन क्या करते वहां कल्पना मत करना बस हो सकता इसके आगे तो इससे समझ में आता है कि जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है वो सबसे रेयर है सबसे बड़ा जादू है मिरेकल। और कई बार भक्तों के संग में जब कोई भक्त ठीक से व्यवहार नहीं करता हमारी तरीके से हालांकि सभी भक्त व्यवहार ठीक से कर रहे हैं क्योंकि वो भक्ति करने के लिए आए हैं। कौन पागल होगा जो चार नियम का पालन बेफालतू करेगा? कौन पागल होगा जो 2 घंटा 16 माला जप करेगा? नहीं। तो हम सभी के अंदर ये बेसिक डिजायर है भक्त कृष्ण भक्त बनने का। हालांकि हम सब के हमारे कंडीशनिंग्स होंगे जिसकी वजह से हम उस भक्ति को हमारी तरीके से हम करते हैं और हो सकता है कि उसके वजह से किसी दूसरे भक्त को ठीक न लगे हम जिस प्रकार से हमारी भक्ति करते हैं या जिस प्रकार से विशेष रूप से भक्ति तो छोड़ दीजिए जब हम संस्था में कार्यरत रहते हैं तो जो संस्था के कार्य हैं वो हमें यहां पर यह समझना होगा कि हमें संस्था के कार्य भक्ति को नजर में रखते हुए करना है। ये बहुत मुश्किल है। इस्कॉन में टिक पाना ये सबसे मुश्किल कार्य है। आप किसी कंपनी में जैसे कई जो होते हैं कंपनी में वो 40-40 साल बिता देते हैं कंपनी में क्योंकि वहां पर पूरा सब कुछ भौतिक है। यहां पर भौतिक और आध्यात्मिक को एक साथ हमें संभाल कर रखना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट ये भौतिक है और उस इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट जिसमें भक्ति की प्रधानता है इन दोनों को संभालना। जैसे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहे इंस्टीट्यूशन इज अ नेसेसरी इविल। ये इविल है इंस्टीट्यूशन सब संस्था के कार्य मैनेजमेंट और उसमें कई बार डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स और ये सब चीजें होती हैं। परंतु यदि हमें कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है तो हमें ये इंस्टीट्यूशन जरूरी है संस्था जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा नेसेसरी इविल। तो यदि हम जैसे यदि मैं एयरफोर्स में रहा होता तो 30-35-40 साल जैसे हमारे जेवरकर प्रभु 40 साल से एक ही कंपनी में हूं उमाइको में और यदि कोई इस्कॉन में 40 साल से है यदि
इस बात को हम सुने तो बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। यदि कोई कहे कि मैं माइकों में 40 साल से, ठीक, लेकिन इस्कॉन में 40 साल, इस्कॉन में 40 साल से क्योंकि सबसे मुश्किल है आध्यात्मिक और भौतिक को एक साथ संभाल के रखना। ये उस प्रकार से है जैसे पानी और तेल को मिलाने की कोशिश। यदि पानी और तेल को मिलाने की हम कोशिश करते हैं तो नहीं मिल पाता। इसलिए हमें ये जान लेना चाहिए कि जितने भी इस हरे कृष्ण आंदोलन में सदस्य हैं उन सब का बेसिक डिजायर देखना चाहिए। वो बेसिक डिजायर क्या था जिसकी वजह से वो आए, और वो अब तक रहता है, वो हर समय रहेगा वो स्पार्क, और वो कि मुझे मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। हालांकि ऊपर कंडीशनिंग्स जो हैं उसके वजह से हम वो जो बेसिक डिजायर है उसको देख नहीं पाते कि ये भक्त इस प्रकार से बात करता है, ये भक्त इस प्रकार से निर्णय लेता है, ये भक्त इस प्रकार से मुझसे व्यवहार करता है व्यक्तिगत रूप से। नहीं, वो जो बेसिक डिजायर, वो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इन सब के अंदर वो एक बेसिक डिजायर देखा कि ये सब पाश्चात्य लोग ये ढूंढ रहे हैं भगवान को। यदि श्रील प्रभुपाद उनके कंडीशनिंग्स को देखते हुए उन पर गौर किए होते, कंडीशनिंग्स को, तो कोई योग्यता नहीं थी भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने की। और इसलिए ये जो सबसे ज्यादा दुर्लभ वस्तु हमें मिली है, रिलेशंस, वैष्णव रिलेशन, इसको जब तक हम संभाल के नहीं रखेंगे तब तक हमारा जब जो कुछ हम कर रहे हैं सब नियमों का पालन, भगवान उसकी तरफ पलक उठाकर भी नहीं देखे। तो इसलिए हम जब इस बात के ऊपर गौर करते हैं कि हम क्यों सौभाग्यशाली, Why we are so fortunate, तब समझ में आता है कि हमें केवल हरे कृष्ण महामंत्र नहीं दिया गया, चैतन्य महाप्रभु ने एक लाइफस्टाइल दिया उस हरे कृष्ण महामंत्र को पालन करने के, और वो है वैष्णव का संग। इसलिए हम प्रेम ध्वनि में क्या बोलते हैं, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जैसे लॉस एंजलिस में हम थे और वहां के टेंपल प्रेसिडेंट सुहास प्रभु वो बता रहे थे कि शुरुआत के समय 1960s में जब प्रभुपाद ने शुरू किया था इस्कॉन, तो ये यूनिवर्सिटी में जाके प्रीचिंग करना शुरू किए सुहास प्रभु और इनके साथ एक और भक्त। तो एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने ऐसे प्रश्न पूछा ये जानने के लिए कि कितने लोग हमें जानते हैं, कितने लोग हरे कृष्ण भक्तों को जानते हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि जस्ट टेल हाउ मेनी हरे कृष्ण डिवोटीज आर देयर इन अमेरिका। स्टूडेंट्स को पूछा कि तुम्हारे अनुसार कितने हरे कृष्ण के भक्त होंगे अमेरिका में, पूरे अमेरिका। तो एक स्टूडेंट ने कहा ये कुछ 10,000, एक ने कहा नहीं ज्यादा है 20, एक ने कहा एक 50 तक पहुंच गया 50,000। तो इस वास प्रभु इतना आश्चर्य किए क्योंकि 1966 या 67 में कुल मिला के केवल 35 भक्त थे इस्कॉन में, 35 का खाली। और ऐसे ही इन्होंने जब प्रश्न पूछा कि कितने होंगे तो हजारों की संख्या में उत्तर आया। तो इनका साक्षात्कार क्या था, ये इसलिए बोल रहे थे कि अभी कई बार ये जब जाते हैं रास्ते में कि एयरपोर्ट जा रहे हैं तो बहुत से लोग पूछते हैं, ए यू हरे कृष्णा वेयर यू हैड बीन, कहाँ हो आजकल तुम लोग। तो ये कह रहे थे कि उस समय हम केवल 35 थे, क्योंकि हम लोग इतना सब जगह जाकर श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए एयरपोर्ट पर, मॉल्स में, स्ट्रीट्स पे हरिनाम करते हुए सब जगह, तो लोगों को लगता था कि ये लोग हजारों की संख्या में जहां पर जाओ इनका दर्शन होता है, थे खाली 35। और उन्होंने कहा कि अब हजारों की संख्या में हैं, लेकिन लोग पूछते हैं कि कहां हैं आप लोग। तो इनका ये कहना था कि क्योंकि उस समय क्यों हम हर जगह पर अपनी उपस्थिति पेश कर सकते थे, क्योंकि हमारे अंदर वो मैत्री का संबंध इतना था, रिलेशन, कि हम जो भी कुछ करते इतने उत्साह से। इसलिए जब तक ये संबंध नहीं है, ये वैष्णव रिलेशंस नहीं है, तब तक वो उत्साह पैदा नहीं हो सकता। जैसे कि किसी भी परिवार में भी आप देखो कि यदि रिलेशन में थोड़ी भी आंच आ जाती है तो फिर उत्साह पूरा खत्म हो जाता है, फिर बात करने की इच्छा नहीं, देखने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं। तुरंत जैसे ही रिलेशनशिप में आंच आती है, सबसे पहले उत्साह खत्म हो जाता है। उत्साह खत्म हुआ तो वो उत्साही कार्य जो है वो सारे खत्म हो जाते हैं। और विशेष रूप से हम जो सदस्य हैं, हमारा एकमात्र उत्साही कार्य है क्या? प्रचार। प्राण ये आए क्या है वो, हाँ, से अच्छे प्रचार। प्राण जी आर से अच्छे प्रचार की भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के अनुसार विशेष रूप से जो प्रचारक हैं या ब्रह्मचारी जो आश्रम में हैं, उनका प्राण है प्रचार। परंतु वो प्रचार तभी होगा जब मंदिर में जो संबंध है वैष्णव के साथ वो हमारा स्वस्थ रहेगा, नहीं तो सब कुछ। और यहां तक कि यदि वैष्णव के साथ संबंध हमारा ठीक नहीं तो ऐसा नहीं कि न्यूट्रलिटी का कोई स्टेज रहता है वैष्णव के साथ, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये बीच का कोई स्टेज नहीं। इसलिए यहां तक बताया गया है कि वैष्णव अपराध में टू निग्लेक्ट अनदर वैष्णव इज ऑल्सो एन ऑफेंस, कि किसी वैष्णव के प्रति दुर्लक्षता ये भी एक अपराध है। तो हमें लगता ठीक है, मैं मुझे ये वैष्णव पसंद नहीं तो मैं इसके तरफ लक्ष्य नहीं दूंगा, मैं इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं, तो सेफ है वो भी अपराध है वो भी एक अपराध है। इसलिए गोलोक वृंदावन जाना इसलिए इतना आसान नहीं है, वही सबसे जो परमोच्च स्थान है भगवान का, वहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये सारे चार नियम, 16 माला जप, ये सब कुछ इतने कठिन नहीं है जितना वैष्णव के साथ घुल मिलकर प्रेम और मैत्री के संबंध के साथ भक्ति करना। और और इसलिए जो हमें वैष्णव के संग में मिल सकता है गोलोक वृंदावन धाम, यदि उन्हीं वैष्णव का अपराध हो हमसे, तो जो पापी की दुर्गति होती है उससे भी बदतर हो सकती है। कैसे? क्योंकि एक जो पापी है वो भगवान की भक्ति में नहीं आया, हालांकि पाप में लगा है, परंतु एक जैसे कि तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक है फॉर्चुनेट, जो सौभाग्यशाली है। एक है मोस्ट फॉर्चुनेट, जो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है। और एक है मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो हम फॉर्चुनेट हैं कि हम मनुष्य जीवन में हैं। वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट बिकॉज वी हैव कम टू कृष्ण कॉन्शियस, इस मनुष्य देह में हम भक्ति में आए भगवान। एंड वी कैन बिकम द मोस्ट अनफॉर्चुनेट व्हेन वी मिस द अपॉर्चुनिटी। तब हमको हाँ नहीं चले ऑफिंग कर। मोस्ट फॉर्चुनेट तो ये बोल रहा था। हाँ प्रश्न नहीं, तो ये मैं बोल रहा था कि हाँ सुरक्ष्य धारा बोलते हैं ना, कि रेजर्स एज के ऊपर चलना, भक्ति करना मतलब रेजर्स एज के ऊपर चलना। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि वैष्णव का अपराध हो जाए वैष्णव के संग में रहते हुए, तो भगवान वो उत्साह को छीन लेते हैं। जो एंथुजियाज्म है भगवान के प्रति भक्ति करने का, वो छीन लेते हैं। तो जब वो उत्साह छीन लिया जाता है हमसे, तब फिर एक पापी के अंदर पोटेंशियल है भक्ति में आने का, परंतु एक निरुत्साही भक्त उस पोटेंशियल को भी खो बैठता है, इसलिए वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट बन जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आज वो बुशी डैम पे कितने लोग बोल रहे थे हरि बोल हरे कृष्ण, हालांकि वो बहुत से अलग प्रकार के कार्यों में लगे हुए होंगे, तो उनके अंदर पूरा पोटेंशियल है भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने का। परंतु उसी बुशी डैम में यदि कोई भक्त जिसका पतन हो गया जाएगा, वो कभी बोलेगा नहीं वैसा, क्योंकि उसके अंदर से वो उत्साह छीन लिया गया है। और क्यों? वैष्णव अपराध के कारण। तो उसी बुशी डैम पे कोई ऐसा भक्त जो भक्ति करने के बाद अपराध के कारण पतन हो गया, उत्साह चला गया, वो जब दूसरे भक्तों को देखेगा तो वो दूर भागेगा, मुझे नहीं, मुझे दर्शन भी नहीं करना। तो इसलिए हमें ये नहीं कहूंगा कि भयभीत रहना चाहिए वैष्णव के संग में, सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एकदम ऐसे कांपते हुए नहीं, हमें सावधान रहना चाहिए। और सावधानी वैष्णव के संग में बरतना, ये प्रेम का लक्षण है। इट्स अ साइन ऑफ लव टू बी केयरफुल। जैसे मां अपने बच्चे के प्रति कितना सावधान रहती है, दैट इज साइन ऑफ लव। तो सोचिए कि भगवान के दृष्टिकोण से हम देखें कि भगवान जब हमें देख रहे हैं कि हम कितना सावधान हैं भक्तों के संग में, भक्तों को डील करते समय, तो भगवान कितना ज्यादा इसमें खुशी महसूस करेंगे। इसलिए जैसे कि जब हमें खुशी होती है कि कोई नए लोग आ रहे हैं मंदिर में और भक्ति को अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो सोचिए कि नए लोग आए, भक्ति को अपनाए उन्होंने, और फिर उन्होंने पुराने वैष्णवों को देखा झगड़ा करते हुए और फिर वो चले गए। नहीं नहीं, यदि मेरी भी स्थिति ऐसे ही हो जाएगी तो मुझे नहीं रहना। जैसे कि बंबई में एक हमारे वहां के मंदिर के वेल विशर हैं, वो 20 साल से आ रहे हैं मंदिर, आके बहुत डोनेशन भी देते हैं, और उन्होंने एक बार कहा कि पता है मैं क्यों ये तिलक और कंठी माला और ये जप और ये सब को इतना सीरियसली नहीं ले रहा। उन्होंने कहा क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे सामने मेरे बाद आया एक व्यक्ति और भक्ति में अब इतना प्रगति किया, गंभीर हुआ, परंतु जब वो शुरू शुरू में आया था तो उसको इतना आत्मीयता मिली बाकी वैष्णव से, लेकिन जब वो भक्त बन गया सब कुछ तिलक अलग लगा के दीक्षा हो गई, मैंने देखा उसको कोई पूछता भी नहीं था बात। तो इसलिए मैं उस स्थिति में नहीं जाना चाहता। मैं यहां पे बाहरी रूप से आता रहता हूं तो सब मेरा ठीक से मुझसे बात करते, क्योंकि सबको क्या लगता है कि ये नया नया है तो सभी ठीक से बात करते, तो मुझे कम से कम वो आदान प्रदान तो मिल रहा है मुझसे। तो बोला आई फियर टू बिकम एन एडवांस डिवोटी बिकॉज देन आई नो दैट आई विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ये शरणार्थ बात है हमारे लिए। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान और सावधान हमें रहना है, हम जो आपस में एक दूसरे के साथ जो जीवन बिता रहे हैं, भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न। इसलिए गीता में भगवान ने क्या किया, क्या कहा है कि जो ये गीता का ज्ञान भक्त आपस में चर्चा करते हैं, भगवान ये नहीं कह रहे कि जब ये दूसरे को जाके नॉन डिवोटी को प्रचार करते हैं। When devotees come and discuss this message of Gita, that is the most pleasing. अर्थात भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम आपस में ये प्रेम मैत्री का संबंध बनाए रखें, और ऐसा नहीं कि केवल हमें दिखाने के लिए बनाना है कि हाँ अभी मैंने सुन लिया कि भक्तों को निग्लेक्ट करना एक अपराध है, तो उसको आर्टिफिशियली अननेचुरली इंपोज नहीं करना कि अब भक्तों को इतना ध्यान देते जाओ कि आप ही को मैं देखता रहूंगा, आप ही के ऊपर ध्यान देता हूं। उसे इस प्रकार से हमें जीवन में अपनाना है कि ये जानते हुए कि यही है सूत्र मेरे भक्ति की प्रगति का। पार्ट टू विल बी डिस्कस टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि जानकीनाथ प्रभु का ऑर्डर है प्रश्न। तो क्या बाकी वैष्णव पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कल सुबह का हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे इस टॉपिक पे भी और भी टॉपिक्स को लेकर। क्या हाँ बहुत टाइम है, 2 बजे का गाड़ी है, चिंता मत करो, इतना झेल नहीं पाएंगे एक साथ, इतना स्टेमिना नहीं है थोड़ा बीच में